जय माँ। 24 अप्रैल दर्शन दिवस है और ये दर्शन दिवस श्री माँ के पांडिचेरी दोबारा और फाइनल, यानी इसके बाद माँ कभी पांडिचेरी से बाहर नहीं गई, उस उपलक्ष्य में दर्शन दिवस मनाया जाता है। दर्शन दिवस के विषय में हम लोग पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, पर मुख्य चीज़ ये है कि उस समय जब श्रीमा श्री अरविंद सुप्रमेंटल अतिमानस चेतना और उसकी शक्ति को उतारने में प्रयासरत थे, तो ये वो दिन दिवस थे जिस दिन वो अपने ही अंदर उसको प्रकट करके, बाकी जो शिष्य वहाँ होते थे दर्शन के लिए जाते थे तो वो उनके माध्यम से उसको ग्रहण करते थे, स्पर्श महसूस करते थे। एक से एक जो कहानियाँ हैं वो दे आर बियॉन्ड, इस पर पुस्तकें भी छपी हैं कुछ दर्शन पे लोगों के जो अनुभव होते थे। पहले दो दर्शन दिवस थे, 21 फरवरी और 15 अगस्त, बाद में 24 नवंबर इंक्लूड हुआ, और फिर चूंकि 23 नवंबर को श्री अरविंद का जो पाँव में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी अपनी एक कहानी है। उसके बाद एक लंबा गैप, क्योंकि 21 फरवरी को भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया था, तो लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, इसलिए 24 अप्रैल भी इंक्लूड हो गया। तो 24 अप्रैल पर हम लोग आते हैं। अब बाद में 1956 के बाद जब अतिमानसिक शक्ति कार्य करने लगी तो दर्शन दिवस का जो ओरिजिनल पर्पस है वो बदल गया, क्योंकि ओरिजिनल पर्पस था कि बिना श्री अरविंद माता जी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के उन विशेष दिनों पर वो अपने अंदर उस शक्ति को प्रकट करते थे, क्योंकि नहीं तो बहुत कठिन था मनुष्य के लिए, कठिन क्या, असंभव था संपर्क में आना। तो और माताजी की इससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी जुड़ी है, वो कहानी है 24 अप्रैल की कहानी है। माँ बताती हैं संक्षेप में 1920 की, कि जब वो आती हैं तो वो श्री अरविंद से उनका आंतरिक वार्तालाप होता है कि क्या इस बार ये संभव होगा, यानी बहुत बार पहले भी उन्होंने, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? धरती की समस्या को सुलझाने का, धरती के ऊपर, यानी समस्या सुलझा देना धरती की कि आप कहीं और चले जाओ, ये तो बात हो गई कि भाई भारत में प्रॉब्लम है तो अमेरिका जाके बस जाओ, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। तो प्रॉब्लम जहाँ है समाधान भी वहीं ढूंढना है। तो वो उसके लिए, वो ये जानते थे दोनों कि एक उच्च चेतना का पृथ्वी के ऊपर उतरना, दिव्य चेतना का, यही उसका समाधान है। बाकी मेंटल प्रोसेस, प्रयास, ये सब इनकी अपनी जगह है। जब आदमी जिस चेतना में रहता है वहाँ प्रयास करता है, ये नहीं कि उसका औचित्य नहीं है, लेकिन इसका जो वास्तविक समाधान है, समुचित समाधान है, वो एक उच्च चेतना का धरती पर अवतरण। तो इसी का प्रयास उन्होंने कई हैं, इसका पूरा बैकग्राउंड है, वेदों में भी है, पर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो माता जी जब आती हैं 24 अप्रैल 1920 में, तो पहला उनके मन में जब श्री अरविंद को मिलती हैं, बताती हैं उसको कि कैसे वो दोनों खड़े हैं और देख रहे हैं पूर्व की ओर, समुद्र की ओर। तो माँ के मन में प्रश्न होता है, क्या इस बार ये संभव होगा? और श्री अरविंद केवल कहते हैं हाँ, और उस समय वो देखती हैं सुप्रामेंटल डिसेंट, लेकिन वो डिसेंट केवल उनके अंदर वो अनुभव करते थे, सबके लिए नहीं था, क्योंकि उनकी देह तैयार थी। सबके लिए क्यों नहीं था? क्योंकि ये इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि ये बच्चों का खिलौना नहीं है। इसका तो यहाँ तक कहा है श्री अरविंद ने कि सुप्रामेंटल क्या है, इसके बारे में बातचीत करना, क्योंकि ये वो है जो शब्दों के परे है, मन के परे है, जिस भूमि पर योगी कहते हैं कि वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, तो उस चेतना को उतारना। लेकिन श्री अरविंद सीमा के माध्यम से जो यहाँ पे, अब वो पूर्व जन्मों जन्मों के कहते हैं ना भाग्य जग जाना, उन्होंने उस स्पर्श को अपने अंदर महसूस किया, धारण किया, एक तरह से वो एक एक्सपेरिमेंटल भी थे। श्री अरविंद ने बताया है कि कौन मनुष्य कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस उच्च चेतना को, क्योंकि मनुष्य अगर तैयार नहीं है वो उसके सारे बंधनों को तोड़ देगी। अब सोचिए मनुष्य बंधनों में कितना सेफ फील करता है, सब लोग कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो एक दिन घर के सब लोग बोलें कि ठीक है आज से तो मुक्त हो, देखिए कितनी परेशानी होगी, खाने बनाने से लेकर के सारे दिन की नहीं, ऐसी वाली मुक्ति नहीं चाहिए, माने मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपना आधिपत्य चाहिए अहंकार का। तो मनुष्य के अंदर अगर सारी पूर्व धारणाएं सब कुछ से अगर वो मुक्त हो जाए, और मुक्त होके अगर वो दिव्य चेतना के अधीन नहीं है तो पागलपन हो सकता है। तो दिव्य चेतना के ही अधीन काम करे तो कितना कठिन है, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। गिवन कि हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जाने अनजाने, अज्ञान में, सोच समझ के या मूर्खतावश, जो भी है, तो उस चेतना जब वो धरती पर काम करेगी तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो पहले उन्होंने कुछ लोगों के अंदर ये कार्य प्रारंभ किया, जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड करते थे, तो हर एक व्यक्ति एक प्रोटोटाइप है। ये सीमा श्री अरविंद बताते हैं कि हम सब, हमको लगता है कि हम अनोखे अनूठे हैं, पर ऐसा कहा गया है कि आप संसार में ऐसे आपके जैसे फिजिकली भी कम से कम 7 लोग हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है 3 तो मैंने देखे, इतने सिमिलर कि आपको मुश्किल होगा ये जानना कि ये सच में कोई और है। तो ये एक एक्सक्यूज भी है, कई लोग दे देते हैं, कोई कहता है कि भाई तुम वहाँ दिखे गए थे, तो नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा कोई प्रतिरूप होगा। लेकिन ये सच है कि केवल फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी देर इज़ ए टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये जो टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है, अलग अलग बाहर से दिखते हैं लोग, लेकिन वो साइकोलॉजिकली। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई समस्या का समाधान होता है, संसार की किसी समस्या का, मान लीजिए किसी के अंदर डाउट्स हैं भगवान के बारे में, या किसी के अंदर क्रोध की बड़ी समस्या, ये दो, एक मेंटल और एक वाइटल को हम ले लें, या किसी के अंदर शरीर में तमस है, लेजीनेस है, तो ये समस्या का समाधान अगर यहाँ होता है, लेबोरेटरी है ये, तो वो इसको अंग्रेजी में कहा गया है मॉर्फोजेनेटिक रेजोनेंस, 100th मंकी या रैट इफेक्ट। तो ये क्योंकि हम सब एक दूसरे से सूक्ष्म गुप्त धागों से जुड़े हैं, तो वह दूसरे के लिए आसान हो जाता है। ये आश्रम का मुख्य कार्य है, वन ऑफ द मेन, नॉट मुख्य कार्य बट वन ऑफ द थिंग, कि हर व्यक्ति के अंदर जो काम होता है वो अपने आप बाकी लोगों के लिए उसका हल पाना या उसको कर पाना आसान हो जाता है रिलेटिवली। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो ये उस समय सुप्रामेंटल के पहले केवल इन लोगों पे, जो प्रोटोटाइप ह्यूमैनिटी, तो आप देखें उनके पत्र, उनकी कठिनाइयाँ आप आइडेंटिफाई भी करेंगे, कुछ से करेंगे, कुछ से नहीं करेंगे, कुछ से कुछ और लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये श्री अरविंद की पत्रावली में है। 1956 के बाद सीमा कहती हैं कि अब दर्शन डे का वह औचित्य नहीं रहा जो पहले था, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? माँ कहती थी क्योंकि अब हम संसार में उस ऊर्जा को वितीर्ण करते हैं, तो उसके लिए पहले भी था मैसेज कार्ड्स, लेकिन मैसेज कार्ड्स पहले रेगुलर ऐसा नहीं था कि हर दर्शन दिवस पे आपको मैसेज कार्ड मिलेगा, लेकिन बाद में हर दर्शन दिवस पे प्रायः मैसेज कार्ड देना प्रारंभ हुआ, और वो इसलिए था कि अब वो चीज़ें जिन पर हमको एक्सपेरिमेंट करना था, जिन पर प्रामाणिक रूप से वो सत्य स्थापित हो गया, उन चीज़ों को माँ मैसेज के माध्यम से संसार में वितीर्ण करती थी, वो वहाँ चला जाता था सब लोगों के पास। तो वो एक सेकंड एक्शन था, लेकिन अब ये जरूर है कि वो जो शक्ति सुप्रामेंटल, जो केवल 4 विशेष दिनों पर उतरता था सीमा श्री अरविंद की देह यष्टि में, जिससे वो सबको वितरित होता था, अब वो अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कहीं भी किसी राह पर किसी मोड़ पर आप खुले हैं, और वो आप, क्योंकि अब वो पूरे संसार में कार्यरत है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वो जो डिफरेंस आया। अब कई लोग पूछते हैं फिर श्री अरविंद के रूम में हम लोग क्यों जाते हैं, अरे आनंद है, श्री अरविंद का रूम तो श्री अरविंद का रूम है, माता जी का रूम, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम केवल सुप्रामेंटल का प्रसाद लेने, हम तो माँ जगत जननी और श्री अरविंद के कक्ष में श्वास लेने जाते हैं तो पर वन शुड अंडरस्टैंड ये जो अंतर है इस दिन के बारे में, हर एक दिन के बारे में माने एक उसका विशेष महत्व बताया है। और 24 अप्रैल के बारे में माँ ने 1937 यानी 1937 24 अप्रैल को इसका सिग्निफिकेंस बताया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि माँ ने 13 वर्ष तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बताया, तो माँ ने सिग्निफिकेंस दिया, अबाउट 24 अप्रैल 1920 द एनिवर्सरी ऑफ माई रिटर्न टू पांडिचेरी which was the tangible sign of the sure victory over the adverse forces. तो अब tangible sign क्या था, adverse forces किस context में कह रही हैं? माँ इसको विश्वव्यापी स्तर पे अभी नहीं बता रही हैं। उनके अपने जीवन में एडवर्स फोर्स ने पूरा विकराल रूप धारण करके कि हम इस योग यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और वो रूप ऐसा था कि माँ 29 मार्च 1914 में आती हैं, वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन देखिए, और इसको पासिंगली शेयरबिंद माता जी दोनों ने बताया इस बात को, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, कि वो जो शक्तियाँ थी विरोध में जो खड़ी थी, वो समझ गई कि ये तो बहुत भयानक, और माँ ने तो आती प्रारंभ कर दिया, आर्य का प्रारंभ कर दिया, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट बिजनेस, सीधा बिजनेस जो जड़ है फॉल्सहुड की उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, न्यू आइडिया का जो ग्रुप था उसको यहाँ पे स्थापित कर दिया। लेकिन उनके साथ उन्होंने किसी को बांधा हुआ था एज ए हस्बैंड, वो पासिंग स्टोरी होगी। तो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार की विभीषिका में सारा जगत जलने लगा। अब लोग कहेंगे कि ये तो ये कैसे हो, कैसे इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। अब देखिए, श्री राम जी की कहानी में दो तरह से हम देख सकते हैं। एक है कि रावण एक पात्र है, असुर है, माता सीता वहाँ जंगल में गई, हमारे लिए माता है, अदरवाइज उसने उठा लिया, राम जी ने चढ़ाई करी, वानर सेना ले गए और जीत करके ले आए, उनका पराक्रम है। पर ये घटना में कोई चीज है जो छिपी है, जो संकेत है, नहीं तो ऐसी कॉन्क्वेस्ट विक्ट्रीज बहुत हुई हैं संसार में। ये घटना ने भारत के मौलिक दर्शन ही नहीं, जीवन पर एक छाप छोड़ी है और विश्व के ऊपर छाप छोड़ी है। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। ये केवल एक राजकुमार और असुर राज की घटना नहीं है, इसके पीछे कुछ और घटनाक्रम है जो हम लोगों को अद्भुत रामायण में भी, उस इस रामायण में भी मिलती है, वाल्मीकि रामायण में, और इसके अगर हम गहन चिंतन में जाएं कि दे आर दी असुराज जो कन्वर्ट होने के लिए आए थे, और कन्वर्ट होने के लिए वो किस हद तक जाते हैं, और माता सीता इसको जानती हैं, इसलिए वो छाया रूप में उसके पास जाती हैं, वो प्रेम से उनको, मतलब प्रेम करता है लेकिन उसका प्रेम असुर का प्रेम है, और कैसे वो प्रयास करती हैं, अंत में खींच करके श्री राम आते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। आप देखो, ही कुड हैव जस्ट अटैक्ड, डन ए गोरिल्ला अटैक, जैसा वो फिल्म बनी थी उसमें दिखाया था। ये फिल्म ने तो मिस ही कर दिया था, वो कौन सी फिल्म थी मैं भूल गया हूँ, साउथ में बनी थी, उसमें बड़ा वो फौजी फौज वौज लेके जाता है, ऐसे नहीं किया था राम जी ने अटैक, श्री राम ने पहले मैसेंजर भेजा था, पहले रुद्र अवतार गए थे हनुमान, और उन्होंने वहां पर जो तहस नहस किया, मैसेज दे दिया था। रुद्र क्या करते हैं, मैसेज देते हैं कि देखो अब समझ जाओ, नहीं तो क्या होने वाला है, इसका मैं एक टेस्ट करा रहा हूं तुमको। तो उन्हें लंका की जो को जलना और उसका एक सब कुछ नष्ट होना, ये मैसेज था एज रुद्र, ही वॉज रुद्र अवतार, कि देखो ये तुम अब अगर नहीं समझोगे तो ये होने वाला है। रावण नहीं समझा, कुंभकर्ण ने समझाया, अंगद ने जाके समझाया, बार बार वो प्रयास कर रहे थे कि वो कन्वर्ट हो जाए। अंत में जब वो कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर युद्ध होता है और रावण वध होता है, रावण वध के बाद वो कन्वर्ट होता है, लेकिन तब तक इट इज टू लेट, मतलब ही कन्वर्ट, सी अंडरस्टैंड, वो सब प्रणाम भी करता है जब लक्ष्मण जी को उपदेश देता है और अपने बंधु बांधवों को भी बताता है, तो वो एक बाद में, लेकिन तब वो कन्वर्शन नहीं कहेंगे, वो एक प्रकार का उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूँ। तो इसी प्रकार की कहानी श्री माँ के यहाँ से जाने में और वापस आने में छिपी हुई है, और वो कहानी माँ स्वयं बताती हैं, उनका एक कन्वर्सेशन है, आई थिंक दिसंबर का कन्वर्सेशन है। एनीवेज, उसको संक्षेप में ये है कि उनका जो उनके जो पति थे, और वो पति वास्तव में असुर ऑफ फॉल्सहुड थे, मिथ्यात्व के असुर, उसको माने अपने पास रखा था कि मैं इस पर प्रयोग करूंगी, इसको बदल दूंगी तो संसार में इसके सारे जो चेले चपाटी हैं वो, तो इट वॉज ए वर्क शी वॉज डूइंग, कि ये क्योंकि मिथ्यात्व तो सबसे जड़ में है, ज्ञान नहीं है, जड़ में मिथ्यात्व है, ज्ञान तो एक कारण है, तो यदि ये मिथ्यात्व जो हर चीज को डिस्टॉर्ट करती, ये अगर कन्वर्ट हो गया तो वो उनके साथ यहाँ आती हैं, चली जाती हैं। एक घटना होती है कई सारी जो हम नहीं जानते हैं, उसको माँ केवल एक बार कन्वर्सेशन में डिसाइपल को बताती हैं, और वो ना केवल उनको बहुत पीड़ित करता था, प्रयास करता था वो। और माँ ये सब बिल्कुल जो माता सीता की चित्र उसकी कहानी है अशोक वाटिका में, वो प्रयास करें कि बदल जाए। ये कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम जगत जननी हो और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यू मेक मी द सुप्रीम लॉर्ड, मुझे तुम सुप्रीम लॉर्ड के रूप में संसार में स्थापित कर दो, श्री अरविंद को नहीं। ये उसका खेल था और स्वाभाविक था कि यह संभव नहीं था। ही कुड बिकम ए चाइल्ड, पर उसको सुप्रीम लॉर्ड की, और वो हर प्रयास करता है, क्रोध में फर्नीचर बाहर फेंकना, पूरी एडवर्स फोर्सेस का जो सबसे विकराल रूप है वो धारण करता है। पर अंत में एक घटना होती है जिसका उल्लेख माँ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में करती हैं। उसमें कहती हैं कि जो भोजन मैंने मनुष्य के लिए परोसा था वो मनुष्य ने अस्वीकार कर दिया। शी वॉन्टेड हिम टू बी कन्वर्टेड। अब वो मैन वर्ड यूज करती कैपिटल एम से, वो एक अलग एक पूरा संकेत है उसमें, मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्सहुड। और चूंकि उसने अस्वीकार कर दिया, मैंने आपको सौंप दिया है, भगवान को सौंप देती है। उस समय उनको एक सुप्रीम का दर्शन होता है। माँ कहती है दो बार उनको सुप्रीम का बहुत विशिष्ट दर्शन होता है, ये पहला था, दूसरा बाद में होता है। और वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत देते हैं इस तरह नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये श्री अरविंद के साथ ही मिलके होगा। तो अब आना है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती हैं। ये डिटेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। शी वुड हैव सेड आफ्टर दिस आई एम गोइंग, लेकिन वो उनके हस्बैंड ही आकर के कहते हैं कि हम लोग पांडिचेरी वापस जाएंगे। तो वो श्योर साइन हो गया कि ये इसके दिमाग के अंदर ये बत्ती जली, और दो दिन के अंदर पैक करके वो पांडिचेरी आते हैं। और उसमें ही वो देखती हैं कि सुप्रीम उनको ले जाके श्री अरविंद के सामने रख देते हैं। जापान की बात है, तो माँ ये जानती हैं कि वहाँ पहुँचना है, लेकिन अगले दिन उसके मन में ये विचार आता है, वो यहाँ आ जाती हैं। जब आ जाती हैं तो 6 महीने बहुत उत्पात होता है, वो तो असुर है फॉल्सहुड का। वो जानता है कि सारी शक्ति यहाँ पर है, इसीलिए भगवान की जो स्थान होता है वहाँ केवल अच्छे लोग ही नहीं जाते, अच्छे बुरे नहीं वर्ड यूज करूंगा, दैट्स नॉट ए गुड, देव कोटि के लोग ही नहीं जाते हैं, मानव अभिप्सुई नहीं जाते हैं वहां पे। श्री रामकृष्ण कहते थे जटुल कुटिल भी जाते हैं, और यहां पर राक्षस असुर भी आते हैं। श्री अरविंद ने यहां तक कहा है कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट असुराज हैव कम कन्वर्ट होने के लिए। एक तो वो या तो कन्वर्ट होने आते हैं या उस शक्ति से आकर्षित होते हैं, उनको शक्ति चाहिए। अब देखिए आप कैसे, रावण शिव जी का महाभक्त है, शक्ति चाहिए उसको, यह पता है कि शक्ति इनके पास है। तो सारे असुर हम देखेंगे शिव जी के भक्त होते हैं, क्योंकि महाकाल तो दे नो की पावर तो यहीं पर है। कृष्ण जी तो बाद बात में बांसुरी बजा के उनको पता नहीं सम्मोहित कर देंगे, बोले चलो 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 युद्ध लड़ो देखेंगे, पर उनको पता है शिव जी का वो स्टेट नहीं है, वो तो फिर महाकाल विकराल तो वो जाते हैं उनके पास। तो शिव जी एक बार उनको देते भी हैं अंगूठा प्रेस करके कि देखो तुम संभाल पाओगे इसको। वो स्टोरी ये है, ये नहीं कि उन्होंने अंगूठा दबाया उसको रोकने के लिए, उन्होंने केवल रावण को ये संकेत दे दिया कि तुम जो मेरा आह्वान कर रहे हो, तुम तो मेरे अंगूठे के प्रेशर को भी नहीं बेयर कर सकते हो, क्योंकि वो अहंकार में जी रहा है, मुझे क्या संभालोगे, मुझे क्या ले जाओगे तुम। तो ये स्टोरी है। तो वो हर बार वो प्रयास करते हैं, तो वो जब उन्होंने देखा तो जब वापस आते हैं तो ये बहुत प्रयास करता है कि मां किसी भी तरह ये बस मान जाए कि मैं ही सुप्रीम हूं, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यह भी वो जानता है, लेकिन वो समर्पण नहीं करेगा। सारी समस्या ये होती है, महिषासुर को भी विवाह करना है माता दुर्गा से, लेकिन समर्पण नहीं करेगा, बलात् करेगा। यही मूल अंतर है असुर में और देव में। यही असुर भी चाहता है वही चीज, लेकिन वो बाय फोर्स। इसीलिए कुछ एक असुर हैं जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, तपस्या बहुत करते हैं। आप देखिए रावण कितना तपस्या किए जा रहा है, लेकिन जो चाहिए मूल रूप से समर्पण विनम्रता, ये नहीं है उनके अंदर। देवताओं में भी बहुत नहीं होती है, लेकिन उनको जब थप्पड़ पड़ता है तो पहुंच जाते हैं, रक्षा करो ना था सो नहीं करता है। तो यहाँ भी वही कहानी है, फिर 6 महीने वो गेस्ट हाउस में रहते हैं और 24 नवंबर 1920 को अचानक श्री अरविंद, उस दिन बहुत अधिक डिस्क्रिप्शन है कि बादल भी गज रहे थे, बिजली कौंध रही थी, बहुत भयंकर वर्षा हो रही थी और श्री अरविंद उस समय गेस्ट हाउस में, जो अभी प्लेग्राउंड में जहाँ हम जाते हैं वहाँ गेस्ट हाउस एक पोर्शन है, तो वहाँ पे श्री अरविंद अचानक उनके जो 2-3 डिसाइपल्स थे नलनी दा वगैरह उनको कहते हैं गो एंड फेच द मदर। अब वहाँ क्या घटना हो रही है और श्री अरविंद को पता है तो वो तीनों जाते हैं एंड मदर इज रेडी, उनको भी मालूम है, तो शी कम्स। उसके बाद वो जो उनके पति हैं वो जाते हैं बड़ी विक्षिप्त अवस्था में, जो उसका होता है बाद में वो एक अलग कहानी है जिसका कोई, ही रिपेंट्स ऑल्सो बहुत बाद में, लेमेंट्स, पर वो एक भाई वो कहते हैं ना कि जब अवसर है आपके पास, वो रावण को कितने अवसर दिए गए थे। तो ये 24 अप्रैल को के बारे में जो माँ कहती हैं, श्योर साइन, टैंजिबल साइन ऑफ द श्योर विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस। एडवर्स फोर्सेस क्या करती हैं, वो हमें भगवान से किसी भी तरह अलग करने के प्रयास में जुट जाती हैं। उनके बड़े सेट तरीके हैं, अभी 2-4 में केवल उल्लेख कर रहा हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे। एक तरीका है, तुम कहाँ, तुम फिट हो भगवान के लिए? कई बार मैं देखता हूँ पत्र ऐसे आते हैं कि तुम फिट हो, तुम तो योग्य नहीं हो। अरे भाई मन तुम रहने दो, ये भगवान पे छोड़ दो। इस बात को तुलसीदास जी समझ गए थे तो वो लिखते हैं चौपाई, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो। अगर राम जैसा स्वामी, मेरे जैसा कुसेवक, अगर मुझे, मैं अपने आप को देखूं तो मेरी कोई होप नहीं है, और आपकी कृपा को देखूं तो सबके लिए होप है। तो ये एडवर्स फोर्सेस हमको कृपा से काटती हैं, वो आपको कृपा से वंचित कर देते हैं, उनका एक्शन ही यही है। और उसी विषय में हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर माने मूल रूप से विक्ट्री जो उनके निज के जीवन की है, इसीलिए वो प्रतीक्षा करती हैं इतने वर्षों तक डिक्लेयर, लेकिन वो जो उनके जीवन में घटित हुआ ये हम सब के जीवन में घटित हो सकता है। उन्होंने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वो प्रयास भी करती हैं कि ये बदल जाए, लेकिन वो अपने अंदर की अभीप्सा से सदैव जुड़ी रहती हैं। और फिर उसके परिणाम स्वरूप, तो उसी विषय में अब माता जी का एक, दो जगह से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से संक्षिप्त में पढ़ेंगे। यहाँ वो कह रही हैं, एक फ़रवरी 3 का उनका एक पूरा विजन है जिसमें वो देख रही कौन से लोग सुपरामेंटल वर्ल्ड के लिए लिए जा रहे हैं, कौन से लोग नहीं लिए जा रहे हैं। तो वहाँ वो बताती हैं कि क्राइटेरिया मॉरल नहीं था, ये नहीं था कि आदमी कितना नैतिक है, ये नहीं कह रही है माँ कि अनैतिक बन जाओ पर नैतिकता क्राइटेरिया नहीं है, उसके परे कोई चीज़ है। हो सकता है व्यक्ति बहुत नैतिक हो लेकिन अंदर में उसके कोई अभीप्सा ना हो, हो सकता है कोई बहुत अनैतिक है लेकिन रोज जप कर रहा है कि भगवान मुझे इससे, तो कहने का अर्थ ये कि बाहर से हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो माँ इनको एडवर्स फोर्सेस को कहती है सेंसर्स। कई लोग हैं जिनका काम ही होता है मानो दूसरे की बुराई देखना, और इसको तो गुरु नानक ने भी ये कहा है कि तो बड़े अच्छे लोग होते हैं क्योंकि ये हमारे पाप की गठरी अपने ऊपर उठा लेते हैं। आप किसी की बुराई देख रहे हैं, मान के चलिए कि आप उसका अपने अंदर ले रहे हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, एडवर्स फोर्सेस यूज़ नहीं करते हैं। एक स्वामी जी एक गए एक जगह पर, एक गुरु जी गाँव में गए, तो गाँव में उन्होंने देखा कि एक महिला थी, उसको बहुत दर्द होता था, सिर दर्द रहता था। तो उन्होंने कहा एक्चुअली तुमने पाप की गठरी उठाई हुई है। अब उन्होंने उसको बोल दिया सबके सामने, बोलना नहीं चाहिए था। तब से अच्छा ये है, पापिन है, उसके बाद चले गए। अब वो क्या करे, अब बोल गए, उन्हें पूछ लिया सिर दर्द, एक और भी बड़ी बात। तो एक साल बाद जब आए तो महिला का सिर दर्द चला गया था लेकिन वहां जितने लोग थे सबको सिर दर्द होता था तो वो बताते हैं गुरुजी कि हुआ क्या, हुआ ये कि तब से सबने इसको तू पापी ने बोल के उसका थोड़ा 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 अंश उठा लिया अपने ऊपर।
आइए मुक्त हो गई। गुरुनानक जी की वाणी में भी है कि वो जो निंदा करते हैं हमारी, वो पाप हमारे धोए, को धो रहे हमारे पाप, पुअर फेलोज। और वो कभी भी ये जो फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं, वो ग्रेस को नहीं मानते हैं। अगर वो ग्रेस को मानते तो कभी ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो याद कराएंगे कि देखो ग्रेस है, कृपा है, कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो केवल डिफेक्ट्स देखते हैं। तो हर जगह आश्रम में भी हैं, और भगवान एक दो को आसपास रख देता है ताकि आपकी प्रगति अच्छे से हो। तो माँ यहाँ पर ये उनका कन्वर्सेशन है, अपेंडिक्स के रूप में है, वॉल्यूम 9 के पेज 279 पर है, 279। माँ कहती हैं, दिस नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मॉरेलिटी। माँ कहती है सेंसर्स हैं जो हमेशा दे आर डेलीगेट्स ऑफ द एडवर्स फोर्सेस। सेंसर कौन है? ये गलत है, ये तुमने क्यों किया, वो नहीं करना था, ये करना था, ये सेंसर्स। तो देयर रोल इज टू क्रिटिसाइज मर्सीलेसली एवरी एक्ट, एवरी थॉट, द स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड टू ब्रिंग यू फेस टू फेस विद द मोस्ट हिडन स्प्रिंग्स ऑफ योर एक्शन, टू ब्रिंग टू लाइट द स्लाइटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ ए लोअर काइंड accompanying what seem to be your purest and highest thoughts and acts. आपके अंदर कितनी भी अंदर में aspiration है, purity, वो नहीं दिखाएंगे। देख 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 तेरी साड़ी में दाग लगा, चुनरी में दाग, वो छिपाने नहीं देंगे आपको। उनका काम ही यही है। तो क्या करते हैं, आपके ध्यान को उधर draw कर रहे हैं। They are not drawing toward the heights, towards the truth. तो माँ कहती है, दीज जेंटल मैन आर नॉट मॉरलाइजिंग एजेंट्स। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े खुद बड़े कोई नैतिक अवस्था में जी रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, दे आर मच वर्स, पर दृष्टि हटा लो बिकॉज ये देखना काम नहीं है, लेकिन वो पॉइंट आउट करेंगे फिंगर। ऑल दो दे नो वेरी वेल हाउ टू मेक यूज ऑफ मॉरेलिटी, एंड वेन दे आर डीलिंग विद अ स्क्रूपलस कॉन्शियंस, they can harass it without mercy, whispering to it in every minute, you should not have done this, you should not have done that, you should have done this thing instead, said that thing, now you have spoiled everything, committed an irreparable mistake, see how everything is irretrievably lost now through your fault. They may take possession of some people's consciousness, you chase away the thought and there it comes back 2 minutes later. तो माँ कहती है, ये वास्तव में बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये ओरिजिनली ये पूर्व देवा, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिंसेरिटी, लेकिन ये गिर पड़े हैं और असुर ये एडवर्स फोर्सेस बन गए हैं। कैसे बन गए भैया? अगर तुम्हें इनसिंसेरिटी क्या दिखाए, तुम सिंसियर बनोगे तो खुद के अंदर देखोगे, लेकिन कृपा को भी देखोगे। ये दूसरों पे उंगली डालना, यही इनका कार्य होता है। इसलिए माँ बार बार रिमाइंड करती है, माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहां पर, एंड दे आर इंटेलिजेंट, देयर इंटेलिजेंस इन्फिनिटली सरपासेस अवर्स, दे नो एवरीथिंग, दे नो हाउ टू टर्न अगेंस्ट यू द लीस्ट थॉट, द लीस्ट आर्ग्यूमेंट, द लीस्ट एक्शन विद अ ट्रूली वंडरफुल सटलिटी, नथिंग एस्केप्स देम बट वॉट। तो ये वो तुम्हारे अंदर छोटी सी भी कोई चीज जो छिपी हुई है, डिफेक्ट जो तुम भी पकड़ नहीं पाए थे, ये दिखा देखो वो है ना, हाँ है, तो बात तो सही है। और वो रुकते नहीं है, ये नहीं कि आपने वो देख लिया या वो मान लिया, वो आपको दूसरा दिखाएंगे। अंत में आप उलझ जाओगे उसी के अंदर, सारी एस्पिरेशन को वो नीचे खींच लेते हैं। तो माँ कहती है, तो ये तो आप लोग कहेंगे तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, आपकी बुराई दिखा रहे हैं आप, ओवरकम। माँ यहाँ पर बताती हैं, बट वॉट गिव्स ए होस्टाइल टिंज टू दीज बींग्स। उनको पता नहीं चलता है कि वो होस्टाइल बींग्स के इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। मैं जानता हूँ, देखा है, इवन बहुत दिनों की बात नहीं है, कुछ लोग जानते भी होंगे, यहाँ भी लोग आए, कम से कम मैं 3 एग्जाम्पल्स ऐसे जानता हूँ, बहुत हाल के जानता हूँ, जिन्होंने आए यंग एज में आए, दूसरों के अंदर डिफेक्ट। उनको मैंने कॉशन किया था, डोंट डू दिस, शायद कुछ लोग स्मरण भी, इसमें तुम दूसरों की गलतियां देख रहे हो, बड़ी डेंजरस चीज़ है, मैंने कॉशन किया था। और वो देखता रहा देखता रहे, एक दिन उसको सभी खराब हैं, सभी खराब हैं। अच्छा, सब खराब हैं, माँ तो हैं लेकिन चला गया, उसके पीछे पीछे कोई और भी चला गया, क्योंकि वो प्रारंभ होती ना प्रोसेस। तो ये वास्तव में तुम पजेस हो जाते हो इनसे, तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम होस्टाइल फोर्सेस के इंस्ट्रूमेंट बन गए हो. तुमको लग रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अपना अच्छा करो. अगर तुमको अपने अंदर डिफेक्ट दिखाई देते हैं, ऑफर करो, रिजेक्ट करो, जो भी करना है. पर जब तुम दूसरों के, जिसको शेरिन कहते हैं रियल और अनरियल डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स, क्योंकि हमको क्या पता है किसी के अंदर क्या चल रहा है, तो यहां पर वो कहते हैं कि वो होस्टाइल टिंज क्या होती है, दैट दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफीटिस्ट. वो अंत में क्या कहते हैं, सब ऐसे ही हैं, किसी का कुछ नहीं हो सकता, वो भूल जाते हैं या देख नहीं पाते हैं, अंधे हैं. किसी के अंदर क्या हो रहा है ये तुम्हें कैसे मालूम है. एक बार किसी ने ऐसी बात, छुटनारायण जी की बात हो रही है, उनसे कहा था, आश्रम के कंटेक्स्ट में कुछ कहा था. छुटनारायण जी कहा, भैया इतने भी हम मूर्ख नहीं है कि खाली पत्थर पे माथा रगड़ने जाते हैं. इट वॉज इज इनिमिकल स्टाइल ऑफ सेइंग, कि ऐसा मत समझो कि जो है वहाँ पे केवल पत्थर पे माथा रगड़ जाए. तुम एक डिफेक्ट देख रहे है, हर किसी में है, लेकिन उसके अंदर क्या संभावनाएं जन्म ले रही हैं, जन्म ले चुकी हैं, कौन सी चीजें चली गई हैं, इसका तुमको कोई आइडिया नहीं है. तो यहां वो कहते हैं डिफीटिस्ट, इफ नीड बी दे डिस्टॉर्ट योर ओन इंटेंशंस. तुमको भी डाउट हो जाएगा, हाँ शायद मेरे अंदर ऐसा हो, इवन जब आपके अंदर वो इंटेंशन नहीं थी. दे आर ट्रूली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिंसेरिटी, बट दे ऑलवेज फॉरगेट वन थिंग. ओरिजिन में वो ये थे, क्या भूल जाते हैं, डेलिबरेटली समथिंग दैट दे कास्ट फार बिहाइंड एज इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट, द डिवाइन ग्रेस. दे फॉरगेट प्रेयर, दैट स्पॉन्टेनियस प्रेयर विच सडनली स्प्रिंग्स अप फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द बीइंग लाइक एन इंटेंस कॉल एंड ब्रिंग्स डाउन द ग्रेस एंड चेंजेस द कोर्स ऑफ थिंग्स. तो उनका काम, वो भी अपने काम से, वो केवल वो दिखाते, वो भूल जाते हैं कि कृपा होती है, जाकी कृपा. देखिए तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, इस पर कितना लोगों ने आक्षेप, क्या नहीं कहा, आप कौन होते हो रामायण लिखने वाले. उनकी अपनी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ थी, तो बेचारे खुद ही कहते हैं मेरी इतनी प्रॉब्लम है जिससे, लेकिन रामचरितमानस का गिफ्ट देखे गए और क्या लिखते हैं वो, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं. कि मैं तो हूं जो हूं, लेकिन राम की कृपा को देखो, कि उस कृपा के लवलेश से, छोटी सी कृपा से, थोड़ी सी मति मंद तुलसीदास से उन्होंने क्या लिखवा दिया. तो माँ कहती हैं, आगे बताती हैं, बट अवर आइडियाज ऑफ गुड एंड ईविल आर सो रिडिकुलस, सो रिडिकुलस इज अवर नोशन ऑफ वॉट इज क्लोज टू द डिवाइन और फार फ्रॉम द डिवाइन. और अंत में एक बहुत अद्भुत बात कहती हैं, ये केवल मेडिटेशन के लिए, आई विल नॉट इलेबरेट. आई सडनली अंडरस्टूड वेरी मैनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट एक्शंस. अब देखो बता रही हैं उनके अपने जीवन की घटना है. पार्ट्स ऑफ माई लाइफ विच हैड रिमेन्ड इनएक्सप्लिकेबल इन ट्रूथ. अब जो कह रही हैं तो बस मेडिटेशन के लिए है. द शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नॉट द स्ट्रेट लाइन दैट मैन इमेजिन इट इज. दैट इट बी ए क्वेश्चन ऑफ मेडिटेशन. अब ज्यादा जिज्ञासा जगा ही नहीं जाए. ऐसा है कि जब आप आंख मूंद के चलते हो ना, बहुत कुछ छोड़ देते हो जो आप भगवान को ऑफर करने वाले थे, वो आपने देखा ही नहीं. तो अब लॉन्ग जर्नी क्या होती है, नहीं कह रही कि टेक अ लॉन्ग जर्नी डेलिबरेटली अगेन, पर कई चीजें हमारे नेचर में जिसको हम लेके चल के भगवान को अर्पित करते हैं. ये नहीं कि अमन देखा कर देते हैं, उसको आंख मूंद लेते, नहीं हमारे अंदर नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, बुरे तो बाहर बाकी लोग हैं. तो यहाँ उस विषय में, तो ये उसी समय की बात से माँ को बहुत प्रयास करते थे ये हरास करने का. अब जो कन्वर्सेशन है वो 7 दिसंबर 1955 का है. ये होस्टाइल फोर्सेस, ये एडवर्स फोर्सेस के बारे में है. और उसमें पहले तो माँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हैं, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो बताती हैं कि कैसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर एक साइकिक मूवमेंट होता है जो भाव प्रधान होता है, और उनकी ये इम्पल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इंटेलेक्चुअली कुछ नहीं समझते. इट इज़ द साइकिक मूवमेंट, द इमोशनल इम्पल्स इज स्ट्रांगर देन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. दे फील एंड इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन फॉर द डिवाइन विदाउट नोइंग, without having the slightest idea of what it is or what it can be, what it represents. उनको कुछ नहीं मालूम है भगवान क्या है, क्या कर सकते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें. लेकिन साइकिक मूवमेंट होता है. लेकिन क्या है वो साइकिक मूवमेंट? नथिंग, नो इंटेलेक्चुअल नोशन, बट ए काइंड ऑफ इम्पल्स, अट्रैक्शन, ए नीड, एन इनएविटेबल नीड. उसके बिना अपना जीवन नहीं विचार में ला सकते. एंड दीज पीपल हु हैव दैट, इफ आई मे से एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेस, ये कृपा से ही मिलता है. ये आ गया कि मैं भगवान को देना चाहता हूं, सब कुछ देना चाहता हूं, दैट मीन्स यू आर थ्रू. मतलब भगवान ने ऑलरेडी आपका साइन कर दिया है, नाम मात्र का एग्जाम चल रहा है. होता था ना ऐसे, पेपर लीक हो जाना, या आपको मार्क्स मिल गए हैं पर आपको अब परीक्षा में बैठना है ना, वो एक प्रोसेस है. दे हैव ए माइंड विच डज नॉट ट्रबल देम, डज नॉट क्वेश्चन, डज नॉट डिस्कस, गो वेरी फास्ट. कई बार लोग कहते हैं अरे योग तो बड़ा कठिन है. एक सरल तरीका है, सबसे सरल, सेल्फ गिविंग, ये है. एंड देन व्हाट इज क्वाइट मिरेकुलस अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी आइडियाज इज दैट एज सून एज दे रीच दैट डिग्री ऑफ कॉन्सेक्रेशन विच आइडेंटिफाइज देम थ्रू देयर साइकिक बीइंग विद द डिवाइन प्रेजेंस, सडनली दे बिकम एंडोर्ड विद कैपेसिटीज ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूटली अननोन टू देयर नेचर. तुलसीदास जी की बात हो रही थी, जाकी कृपा लवली, क्या लिखा उन्होंने सच में. तो रामचरित मानस, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है, इट्स इनकम्पेरेबल. पर रामचरित मानस में जब वो वर्णन करते हैं श्री राम का ही, जब आरती है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवे दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अब लगता है कि सामने देख रहे हैं वो. वो एक अलग प्रकार का दर्शन है. और तुलसी के जो राम है वो भगवान है, वाल्मीकि राम भगवान नहीं है, उनके अंदर एक टच है कि हाँ वो विष्णु भगवान का, पर तुलसी तो भगवान को साक्षात खड़ा कर देते हैं. तो ये एक कुछ लोग हैं जिनके अंदर, और फिर मां बताती हैं एक केस का, एक व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर ये होता है. आई हैड ए केस लाइक दिस इन फ्रांस ए लॉन्ग टाइम अगो ऑफ ए यंग, वेरी यंग गर्ल. तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके साथ ये अचानक उसके अंदर एक भाव उठा, फेल्ट एंड इम्पीरियस नीड टू सीक द डिवाइन टू कॉन्सेक्रेट हरसेल्फ टू हिम. मैं तो बस भगवान को अपने आप को देना चाहती हूँ. एंड शी बिगैन टू डांस इन हिज ऑनर एट फर्स्ट. अब देखिए मीरा बाई की कहानी हमारे यहाँ ही नहीं हुई है, पर हम लोग चूंकि इन चीज़ों का वो बहुत वैल्यू करते हैं तो हमारे यहाँ वो ट्रेजर्ड है. भगवान ने और भी जगह लोगों को रिवील किया है. अब देखिए अगर आप इस कहानी को पढ़ें, हालांकि ये फ्रांस की कहानी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा भाई की कहानी. वो 8 साल की उम्र से डांस करने लगती है. एंड शी ट्रूली डांस्ड मोस्ट रिमार्केबली एंड देन सडनली शी वांटेड टू एक्सप्रेस व्हाट शी वाज फीलिंग. शी बिगैन राइटिंग लेटर्स विच वेर वंडरफुली पोइटिक. बिल्कुल मेरा भाई की लगता है, माँ कोई चीज कहती है ना तो उसके पीछे ये भी है कि भाई देखो ये जगह जगह ये घट चीजें हुई हैं, लेकिन भारत ने इनको संजो के रखा है टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया. लेकिन ये चीज जहां भी, और वो डांस करने लगी और फिर वो पोइट्री लिखने लगी जो अद्भुत थी. पेज फॉलोड पेज एंड शी रोट ऑल विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी. इट हैपेंड that due to certain circumstances she had some difficulties, there was something in her nature which pulled her back towards the old nature, she had given up. और फिर उसके बाद वो वापस practical और materialistic बन जाती है. अचानक कोई चीज, और वो कहते हैं ना वो गिर जाना योग से. योग से पतन ये नहीं कि मनुष्य क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, योग से पतन है जब आपकी अभीप्सा आपकी कहीं और मुड़ जाते हो कि नहीं पैसा कमाना जरूरी है, धंधा होना जरूरी है. मतलब वो करो लेकिन आपके अंदर की एस्पिरेशन को इंटैक्ट रखो. और उसके बाद क्या होता है, शी वॉज इनकैपेबल ऑफ पुटिंग टू वर्ड्स टूगेदर. शी कुड नॉट राइट ए लाइन विदाउट मेकिंग नंबरलेस स्पेलिंग मिस्टेक्स. वही जिसके अंदर ये अद्भुत कैपेसिटी. व्हेन शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन, अब इसकी पूरी कहानी बताती है माँ. उसके बाद वो बताती हैं कि If one attains the true consciousness, there is no longer any problem to solve. What you have to be, you become. और true state कैसे? By giving oneself. जब बहुत ज़्यादा हिसाब किताब दुनियादारी, इसी में तो दुर्योधन चूक गया. हिसाब किताब कर रहा था, अकेले कृष्ण को लूँ या पूरी सेना को लूँ. फिर वो कहता है, ये तो ऊपर से इन्होंने कंडीशन दे दी है कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा. कहता है ये घाटे का सौदा है, ये तो नहीं करूँगा. थोड़ी काउंसिल देंगे, उसके लिए तो मेरे पास एक से एक हैं. तो ही मिस द पॉइंट. और अर्जुन क्या करते हैं, इसी का उनको प्रतीक्षा थी. तो केशव कहते हैं कि देखो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पता है ना. अर्जुन कहते हैं शस्त्र तो मैं उठाऊंगा, आप साथ में रहिए, शस्त्र की मुझे चिंता नहीं है, आप साथ में रहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. यही अंतर है. और जिस दिन उन्होंने ये किया है, वो विक्ट्री उस दिन निर्धारित हो गई थी. इसको कहते हैं चॉइस. अब वो चॉइस तो हृदय ही कर सकता है ना, कैलकुलेटिंग माइंड नहीं कर सकता है. वो दुर्योधन तो कैलकुलेट कर रहा था. और शकुनी को ये बात समझ आ गई थी, कहता है दुर्योधन को, घाटे का सौदा कर लिया तूने, चुन लेता कृष्ण को. पर अब वो तो श्री कृष्ण ही उसके बुद्धि में डाला होगा. करता धरता. एंड वो अवस्था जब होती है, द सो कॉल्ड डिफिकल्टीज इमीडिएटली वैनिश. अब माँ इसके बाद बताती हैं कि अदर्स जो पहले समझना चाहते हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल, हैव स्टडीड, कैन प्ले विद वर्ड्स एंड आइडियाज, हु विल गिव यू ब्रिलियंट लेक्चर्स ऑन ऑल द फिलोसफीज, ऑल द रिलीजन्स, ऑल ह्यूमन कंसेप्शंस, एंड हु परहैप्स विल टेक ईयर्स टू एडवांस वन स्टेप. बहुत बड़े बड़े वो कंपेरिजन कंट्रास्ट, पता नहीं कितनी कितनी फिलोसफी पर आपको लेक्चर दे देंगे, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ने में उनको कठिनाई होगी. Because all that goes on in the head. Many things go on in the head. फिर वो बताती हैं, it's not the head which has wings, it's the heart. अब गीता भी यही बताती है, crowning movement भक्ति बताती है, ultimate secret समर्पण बताती है, और ये भी बताती है कि हृदय में मैं निवास करता हूँ. गीता यही चीज बता रही है. पर ये मूवमेंट केवल एक इमोशनल उसका नहीं, ये सेल्फ गिविंग लगता है. अच्छा ओके, मेरे अंदर थोड़ी भक्ति भाव आ गया. इट इज गिविंग वन सेल्फ, कैलकुलेटिंग नथिंग. मुझे क्या मिला नहीं मिला. कुछ एक सूफीज के अंदर ये भाव था, लोग कहते हैं, अब लाइन आ रही है तो बोल देता हूँ, उर्दू की वो है ना, गदनारी गवारी कहे सो कहें, मैं तो पिया से नैना मिला आई रे. अपने गुरु के बारे में क्या, ये लोग कहेंगे कैसा मूर्ख है, इतना बड़ा अमीर खुसरू ना, इतना बड़ा निज़ाम, पैसा इतना कुछ, हो जाके ये निज़ामुद्दीन के चरणों में बैठ गया. कहते कहेंगे लोग गंवार है, कहें सो कहें, मैं तो पहुंच गई मेरे पिया से नैना मिला आई रे. ये जो भाव उठता है ना कि आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ टू द डिवाइन, इट्स दिस, यस दिस इनेविटेबल नीड, यही मायने रखती है. क्या सच में हमको भगवान की जरूरत है? क्या हम कल्पना कर सकते हैं सब कुछ है हमारे जीवन में, अगर ये फैक्टर नहीं है क्या हम जिएंगे? अगर हम जिएंगे तो अभी तैयार नहीं है. दैट्स एवरीथिंग, ओनली दैट. एंड सो आफ्टर ऑल वन डजंट केयर ए रैप फॉर ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज, व्हाट कैन दैट डू टू यू? एडवर्स फोर्सेज, ये फोर्सेज, उसने ये कहा, इसने वो कहा, इट डजंट काउंट. One laughs at times also. What does it matter to you if it takes long? For a much longer time, you will have the joy of aspiration, of consecration, of self-giving. मैं तो ये फंडा था, ये फॉर्मूला होता था. लोग कहते थे ये कठिनाई, अरे इतने 300 वर्ष लगेंगे, 1000 वर्ष लगेंगे. सुप्रमण्यम ने कहा, अच्छी बात है, 1000 वर्ष सेवा करेंगे, मजा आएगा. कहते ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा यही तो बात हुई. मुझे तो मजा आ रहा है सेवा करने में, और सेवा करेंगे, 10 जन्मों में सेवा करेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बाकी तो वो देख लेंगे. मेरी तो ये लॉजिक होती थी कि भाई ठीक है, पर ही टेक्स यू वेरी फास्ट, वो एक अलग बात है. फॉर दिस इज द वन ट्रू जॉय एंड दिस जॉय. अब कोई प्रोग्रेस कर रहा है, इसका जो 100% श्योर साइन है, ही विल बी हैप्पी. माने यहां तक कहा है कि अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो तुम्हारे अंदर कोई इनसिंसियरिटी छिपी है. वो जॉय स्पॉन्टेनियस आएगा. इफ यू आर नॉट हैप्पी देर इज समथिंग रॉन्ग. यू मे थिंक ये लग सकता है कि तुम बहुत मैं तो रोज बैठ के 2 घंटे ध्यान करता हूं. शेरविन से किसी ने कहा था कि वो तो बहुत ध्यान करता है वो व्यक्ति, गुस्सा क्यों करता है. फिर भी शेरविन ने कहा अपनी पत्नी पर ध्यान करता है वो. उनको पता है क्या छिपा है उनसे. आप आंख मूंद के किसको मूर्ख बना रहे हो. तो यहां वही बात है कि दैट जॉय, वो जॉय जो आता है. और शेरविन यहां तक कहते हैं कि जॉय पहली चीज है और आखिरी चीज है. और दिस इज द फर्स्ट थिंग वन ऑब्टेन्स एंड द लास्ट वन रियलाइजेज एंड इट इज द साइन ऑफ विक्ट्री. विक्ट्री इज टू बी हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टू स्टार्ट विद. अम्मा कहती है अगर एडवर्स फोर्सेज आए लाफ एट देम. ठीक है सुन लिया तुमने कह दिया ना ओके फाइन ग्रेस इज देयर. ज्यादा बकबक नहीं करो जवाब नहीं कर. और है लोग मैंने देखा है इन इवन इन इलनेस शरीर के अंदर, पर उनके जॉय को देख के आश्चर्य होता है. हमारे डिजरे में भी है ऑलवेज दे आर इन स्टेट ऑफ जॉय. सो लॉन्ग एज यू कांट बी इन जॉय, ए कॉन्स्टेंट काम पीसफुल ल्यूमिनस इनवेरिएबल जॉय, well it means that you have still to work to purify yourself and sometimes work hard and this is the sign. to sara pain suffering separation ke sath aati hai aur joy pehla gift hum sab wo kehte hai na ab kahin bhi jate hain jaise hum air force mein gaye to fmc mein to pehle hum logon ko wo bata dress de di jati thi. fauj join karte ho aapko dress kahin bhi jate hain na kuch aapko rule book pakda di jati hai. तो आश्रम में क्या पकड़ा जाता है भगवान की सेवा में आश्रम में कहें आपको जॉय आप इसको संभाल के रखो. किसी ने वो मांगा था ना दारा, तो दारा ने कहा कि माँ मुझे कुछ काम दीजिए. माँ ने कहा बी हैप्पी. 2 दिन बाद आके कहा माँ बहुत कठिन है कुछ और काम दीजिए. और था देखो मुसलमान था. अब उसके दिमाग में बार बार आता था कि यहाँ मुसलमान क्यों नहीं है, हम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, ये सब क्यों, क्योंकि वेदों की बात श्री अरविंद कर रहे हैं, उपनिषद की बात कर रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ने को क्यों नहीं बोल रहे हैं. अब वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था इस बात को. उनके पत्र हैं श्री अरविंद के, कहते तुमको पढ़ना है जाके बाहर पढ़ो, इस आश्रम में नहीं करो. अब फिर उसको बताते कैसे कैसे समझाते हैं. तो फिर माँ कहती है ट्रूली स्पीकिंग इट इज विद द एडवर्सरी दैट सफरिंग केम इन टू द वर्ल्ड. अब कहा है ना बुले शाह ने तेरी तलवार के नीचे मैं नचियां करके तैयार तैयार. एंड इट्स ओनली जॉय विच कैन वैंक्विश हिम, नथिंग एल्स वैंक्विश हिम डेफिनेटिवली फाइनली. इट इज डिलाइट विच हैज क्रिएटेड एंड इट इज डिलाइट विच विल एकम्प्लिश. ऑफकोर्स माँ बताती है कि मनुष्यों ने जॉय को भी विकृत कर दिया है. वो हम सब जानते हैं, जुआ खेला, दारू पिया कि हमको बड़ा मजा आया. माँ प्लेजर ट्रिप की बात नहीं कर रहे हैं, एक अंदर में जो जॉय आता है. नेचुरली डिसाइपल ने पूछा माँ आप कह रही हो कि एडवर्सरी पर कॉन्कर करने के लिए जॉय चाहिए, पर जॉय के लिए एडवर्सरी को कॉन्कर करना पड़ेगा. तो माँ उदाहरण देती हैं, क्यों ऐसा तो मैं नहीं कह रही. One must go beyond him and ignore him. ये एक बहुत भयंकर सूत्र है, बहुत अद्भुत सूत्र है. कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बार बार पिन पॉइंट करा है, मिस्टेक, जस्ट इग्नोर, स्टार्ट इग्नोरिंग. देर इज वन थिंग यू मस्ट बिगिन बाई डूइंग, इट इज ट्रू, दैट इज टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम हिज इन्फ्लुएंस. और माँ कहती है कुछ लोग केवल इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है इसको लेके भी अपने दिमाग में, उनका अपने जीवन का, ये 24 अप्रैल से रिलेटेड है, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया था कि उन्होंने इसको जिम्मेदारी के रूप में लिया था. और वो कहती हैं उनकी प्रेयर्स में कि हाउ कैन आई गो, दिस इज अ वर्क आई हैव अंडरटेकन फॉर यू. बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम द एडवर्सरीज इन्फ्लुएंस एंड कॉन्करिंग द एडवर्सरी. कहती तुम उससे पूरी तरह मुक्त हो जा सकते हो, अपने मार्ग पर बढ़ोगे. कॉन्कर करना अलग बात है, ये चीज सबको नहीं दी जाती है. To conquer the adversary is not a small thing. One must have a greater power than his to vanquish him. उसके बारे में भी माँ यही कहती है, ultimately it is a glorified body and not a crucified body that will conquer the adversary. और आप मिलेंगे बहुत लोग हैं जो केवल doubt डालने के उसमें, और वो कहते हैं वो बहुत सारे लोग मिलेंगे, just ignore them. उनसे आपको कोई verbal, क्योंकि वास्तव में मैटर क्या करेगा, मेरा क्या संबंध है और उसमें क्या आप अनुभव कर रहे हो. एंड फ्रॉम द मिनट वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हिज इन्फ्लुएंस वन सेल्फ गिविंग कैन बी टोटल. ये आपको देने नहीं देगा, बार बार हीन भावना, विकृत भावना, अरे आप तो क्या कह रहे हो, आप भगवान भगवान के नाम ले रहे हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, आप भगवान के नाम लेने के योग्य नहीं हो. ये उसके टिपिकल मेथड होते हैं. एंड विद द सेल्फ गिविंग कम जॉय. आप बोलो अच्छा चलो ये पार्ट तूने दे, ये भी मैं दे रहा हूं भगवान को. अंदर अंदर उसका काम ही यही है अनफॉर्चुनेटली. और खुद सफर करता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अंदर में बहुत पीड़ित होते हैं. आई हैव सीन, भगवान से भी दूर चले जाते हैं बहुत देख के. कभी कभी मुझे भी पीड़ा हुई कि क्यों. अगर तुमको लगता है दूसरों के अंदर फॉल्ट है तो खुद तो भैया तुम जॉय में रह लो, तुमको कौन मना कर रहा है. सब खराब हैं, तुम तो अच्छे बन सकते हो. सिंपल लॉजिक, एक उदाहरण दे दो संसार में कि देखो सब खराब हैं, मैं हूं संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति, तुम क्यों दूर जा रहे हो. एंड विद द सेल्फ गिविंग कम्स जॉय लॉन्ग बिफोर द एडवर्सरी इज ट्रूली वैंक्विश्ड एंड डिसअपीयर्स. The adversary will disappear only when he is no longer necessary in the world. तो insincerities होंगी, वो आसपास फटकेंगे और देखें आप प्रगति कर रहे हो तो और आएंगे, चिपक जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे और आप ही उनको दूध पिलाओगे. कहते हैं ना सांप को दूध पिलाना, पहले बीन बजा के बुलाओगे, फिर दूध पिलाओगे, फिर बोलोगे शिव 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 शिव, भागे फिरोगे. अंत में सांप भी आपको पहुंचा ही देगा, क्योंकि पीछे जब पड़ जाएगा आप भागोगे कहाँ, उसका निदान मिलेगा शिव जी के चरणों में, और कहीं निदान मिलेगा नहीं. तो अल्टीमेटली भगवान ने अपनी ग्रैंड स्कीम में ये सब बनाया हुआ है, ऐसे भी वैसे भी. ओनली थिंग इज कि ऐसे आप खुशी खुशी जा सकते हो कृष्ण जी की बांसुरी के पीछे पीछे, और डरे डरे सांप से जाओगे तो शिव जी के पास जाओगे, वहां त्रिशूल लेके खड़े होंगे तो आपको फिर डर लगेगा कि मुझे तो नहीं मारेंगे. वो तो आशुतोष है. ये भी श्री अरविंद की एक कविता है. And we know very well that he is necessary as the touchstone for gold to know if it is pure. वो यही काम है उस बेचारे का, उसका काम यही है, job description यही है. अगर आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हो, you can maintain the joy, मतलब वो छोड़ देगा आपको, एक समय के बाद आपको परेशान करना छोड़ देगा. हो सकता है आपके जीवन में रहे आसपास. तो ये basically इसके बारे में. और अंत में बट इफ वन इज रियली सिंसियर द एडवर्सरी कांट इवन अप्रोच हिम एनी लॉन्गर. तो वो आते हैं हमारी सिंसियरिटी को और गाढ़ा बनाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उनका एक फंदा होता है, उसमें नहीं फंसना चाहिए कि कृपा नहीं है. और वो छोटी सी चीज को एग्जेजरेट करते हैं. इसको श्री अरविंद कहते हैं देर इज ए लिटिल स्टोन दे क्लैप अ होल हिमालिया इन फ्रंट. वो तुम्हें बार बार ये किया असंभव है, तुम व्यर्थ हो, गए गुजरे हो, डिफेक्ट है जिसके कारण वो खिंच के आए हैं. उन बेचारों का काम ही यही है नाली साफ करना. तो कई बार बोलता हूँ जो दूसरों की गलतियाँ देखते रहते हैं ना, उनको क्या काम दिया है माने, स्कैवेंजर्स का काम कर रहे हैं बेचारे, और क्या डर्ट देख रहे हो दूसरों में तो आप उससे आइडेंटिफाई हो रहे हो. तो वो एंड ही डजंट ट्राई इट because that would be courting his own destruction. Only some people have a fighting instinct. Uski maa batati hai ki wo bhayanak hai, inse ladna nahi chahiye. Kuch log ladte hain lekin wo phir bhi agar bach jate hain kyunki unko divine grace mein trust hota hai. Kisi bhi circumstance mein bhagwan ki kripa mein bharosa rakhna, shraddha rakhna, isko nahi khona chahiye. Ye kaam inka moolatah yahi karna chahte hain कि भाई देखो क्या तुम्हारे अंदर क्या अंतर आया है. अब डोंट गेट इनटू प्रूविंग देम रॉन्ग, वो आपके भगवान के बीच की बात है.
माँ कहती है दीज आर सेव्ड ओनली बाय दैट ट्रस्ट इन द डिवाइन ग्रेस, कौन जो उनसे लड़ने लगते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं. बिकॉज इवन इफ दे एक्ट फुलिशली एंड लैंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच कम्स एंड पुल्स देम आउट ऑफ द होल एट द लास्ट मोमेंट. यानी जो श्रद्धा जिनके अंदर है वो एडवर्स फोर्सेस से अगर लड़ें भी तो अंत वो बहुत भयानक हैं. और देखिए आप अगर महाभारत पढ़िए तो कैसे अर्जुन उनके इन्फ्लुएंस में आके लड़ने चला गया था त्रिगत नरेश से, जिसका काम ही यही था ले जाना दूर, और कृष्ण मना करते हैं बट ही डजंट अंडरस्टैंड, और उसमें अभिमन्यु का वध होता है. ए लिटल लाइक द मदर कैट कैचिंग इट्स यंग वन विच इज गोइंग टू ड्राउन बिकॉज इट हैज मेड ए मिस्टेक एंड वॉन्टेड टू वॉक अपॉन वाटर. तो कहती है एडवर्स फोर्सेज से लड़ना इट्स लाइक ट्राइंग टू वॉक अपॉन वाटर. शी कैचेज इट, पुल्स इट, brings it out, a little like that. Lekin, but it is always said that one must not tempt God. Ab ye kyon keh rahi hai, Christ ki usme bhi aati hai. Christ ko devil aata hai. Kehta hai, tumhare bhagwan, tum mante ho na bhagwan mein? Kehta hai, haan. To aisa karo, yahan se chhalang laga do. To bhagwan tumhare bacha lenge. Dekhi, Christ kehte hai, one must not tempt the Lord. My God, ये मतलब नहीं है कि मैं मूर्खता करूंगा भगवान बचा लेंगे, तो मैं मूर्खता करूं. ये मानव मन इतना क्रुकेट होता है ना कि अच्छा भगवान बचा लेंगे तो मैं जो मर्जी करूं, ये नहीं कहती. माँ कहती ये नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी मनुष्य बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्खता है और करने की जरूरत नहीं है. तो माँ कहती है वन मस्ट नॉट टेम्प्ट गॉड, वन शुड नॉट डू समथिंग थ्रू, हाउ टू पुट इट स्वीटली. अब क्योंकि ये पूरा जो आख्यान है ये माँ बड़े मधुरता से बोल रही है, वो कह रही है प्री मेच्योर बोल्डनेस. ये सारे जो लेफ्ट हैंड तंत्र था ना, प्री मेच्योर बोल्डनेस, इस ये वर्ड अप्लाई करेगा वहां, प्री मेच्योर बोल्डनेस विद द आइडिया ओह इट डजेंट मैटर द डिवाइन विल ऑलवेज पुल मी आउट ऑफ द डिफिकल्टी, दिस इज नॉट गुड. हालांकि माँ ने किया है, अमल किरण क्या नहीं करते, माँ उनको बार बार कहती हैं यू आर ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ माई प्रोटेक्शन, और कहते हैं कि संसार का कोई कुकर्म नहीं जो मैंने नहीं किया, चाहे वो जुआ खेलना हो चाहे ये, लेकिन उनकी फेथ माँ में जो थी अद्भुत फेथ है. एक बार उन्होंने 3 गुना ज़्यादा वो दवाई खा ली जो जिसे आप यू विल डाई, तो उन्हें अनुभव किया कि वो एम्फेटामाइंस थी कि भाई लगता है मरने वाले हैं, तो उन्होंने फिर कहा कोई बात नहीं माताजी को सौंप देता हूं अपने आप को. तो उसमें भी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ मदर एंड मदर इंटरवीन्ड एंड सेव्ड हिम. माने इसकी बात कही है, कई बार वो माँ की प्रोटेक्शन से बाहर जाना ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ हैबिट. तो ये करना नहीं चाहिए, वो अलग बात है कि आप करा है लोगों ने, वो भी वो एक उदाहरण है. और माँ ने लिखा भी यू आर रिपीटेडली गोइंग आउट ऑफ माई प्रोटेक्शन, पर सब कुछ करके भी देखो हाउ ही वेंट अक्रॉस. मुझे याद है एक बार मैंने उनसे, मैंने नहीं पूछा था पर मैं वहाँ था, 105 वर्ष उम्र होगी उनकी उस समय, और कई लोग रूम में थे उस समय. मैं तो राउंड लेने के लिए क्योंकि नर्सिंग होम में, तो मैं रुक गया क्योंकि किसी ने कुछ पूछ लिया था उनसे, तो प्रश्न मैंने सुन लिया था. उन्होंने कहा एक हमको सीक्रेट बता दीजिए आप साधना के लिए, जस्ट गिव अस वन सीक्रेट. अब देखिए वन ऑफ दो जिन्होंने सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन माँ ने प्रॉमिस किया था और उनको दिखाया था, तो सब पूछना चाहते हैं और नलिनीदा चुप हो गए, ये अमलदा चुप हो गए. वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा उस समय बोलते नहीं थे, तो फिर लोग भी तो ऐसे हैं कि भाई चुप रहने दो. वो बार बार he has asked something, she has asked something, suddenly comes out and says, just give us one secret, the ultimate secret, aise kar kar ke, kehte hain love the mother, he went into, love the mother. To ye secret hum sab ke liye, kal ke liye Gita ka bhi yehi sarvoch satya hai, sarvdharman parityajya mamekam sharanam raja, aham tva sarvapapebhyo mokshishyami mashucha. Let us go with this one thought. Love the mother. और श्री अरविंद उसके आगे की बात कहते हैं. लव करना बड़ा मुश्किल है, हम लोग तो प्यार का पा नहीं जानते. तो श्री अरविंद कहते हैं नो दैट द मदर लव्स यू, नो दैट द मदर लव्स यू. जय माँ.